लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए याचना करते हैं, ताकि कलीसिया हर स्तर पर श्रवण और संवाद को अपनी जीवन शैली के रूप में अपना सके और स्वतः को विश्व की परिधियों की ओर पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है सिनोड धर्माधर्शकों की धर्म सभा के उद्घाटन मिस्सा बलिदान में संत पापा फ्रांसिस का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने नए कार्डिनलों के संग यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए धर्माधर्शकों की धर्म सभा की शुरुआत की। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यीशु अपने पिता की प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं और उन अच्छी बातों की परख करते हैं जो गुप्त रूप में विकसित होती हैं। वचन रूपी बीज, जिसका स्वागत साधारण लोगों के द्वारा होता है, ईश्वर का राज्य अंधेरे में भी हमारा मार्ग प्रदर्शन करता है। संत पापा ने कहा,
Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme.
हम यहाँ संसदीय संगोष्ठी या नवीनीकरण की योजना को संचालित करने हेतु जमा नहीं हुए हैं। हम सभी यहाँ ईश्वर की निगाहों में एक साथ चलने के लिए हैं, जो पिता को धन्य कहते और उनका स्वागत करते जो अपने में प्रताड़ित और चिंतित हैं। संत पापा ने यीशु की निगाहों के बारे में कहा जो धन्य कहती हैं। तिरस्कार का अनुभव करने के बाद भी यीशु अपने को निराशा में कैद होने नहीं देते हैं। वे अपने में कटुता का अनुभव नहीं करते हैं। वे प्रशंसा करना नहीं छोड़ते हैं। यह पिता के संग उनके हृदय के जुड़े रहने को व्यक्त करता है। अतः वे अपने तूफानों की घड़ी में भी शांत रहते हैं। ईश्वर की यह निगाह जो प्रशंसा के भाव प्रकट करती, हमें एक कलीसिया होने का निमंत्रण देती है, जहां हम हृदय में खुशी लिए ईश्वर के कार्यों और वर्तमान बातों का आत्म परीक्षण करते हैं। ऐसा करना हमारे विचलित करने वाले क्षणों में हमें निराश नहीं करता और हम आदर्श बातों की खोज नहीं करते, अपने को पूर्वकालिक धारणाओं में फंसा नहीं पाते, अपने को सुविधाजनक समाधानों का शिकार नहीं होने देते। हम दुनिया को अपने में हावी होने नहीं देते हैं। यह कलीसिया का आध्यात्मिक विवेक है, जिसे संत योहन 13वें संक्षिप्त करते हुए कहते हैं,
È necessario prima di tutto che la Chiesa non distolga mai gli occhi dal sacro patrimonio della verità ricevuto dagli antichi.
यह सर्वप्रथम जरूरी है कि कलीसिया कभी भी आचार्यों से प्राप्त सत्य की पवित्र विरासत से अपने को दूर ना करे, लेकिन साथ ही उसे वर्तमान की ओर भी देखना चाहिए, नई परिस्थितियां और जीवन के नए स्वरूपों को जिसे आधुनिक दुनिया पेश करती है, जो कैथोलिक प्रेरिताई हेतु नए मार्ग को खोलते हैं। संत पापा ने कहा, यीशु की निगाहें जो धन्य कहती हैं, हमें एक कलीसिया होने का निमंत्रण देती है, जो आज की चुनौती और मुसीबतों को एक निर्णायक और विवादास्पद भाव से सामना नहीं करती है। इसके विपरीत वह अपनी आँखों को ईश्वर की ओर अभिमुख करती, जो एकता है। वह आश्चर्य और नम्रता में उन्हें धन्य कहती और उनकी आराधना करती है, यह स्वीकारते हुए कि वे एकमात्र ईश्वर हैं, हम उनके हैं। हम इस बात को याद रखें, हमारा जीवन सिर्फ उन्हें दुनिया में लाने के लिए है। जैसे प्रेरित संत पौलुस हमें कहते हैं, हमारे लिए यीशु मसीह को छोड़कर और कोई महिमा नहीं है। हमें दुनियावी महिमा की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने को दुनिया की निगाहों में आकर्षक नहीं बनाना चाहते हैं, वहीं हम इसकी ओर सुसमाचार की सांत्वना में पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर के अनंत प्रेम का साथ देते हुए एक बेहतर रूप में और सबों के लिए। वास्तव में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने धर्म सभा से संबंधित एक बात विशिष्ट रूप में कही है। हमारे लिए सवाल यह है, ईश्वर ने हमसे बातें की हैं। उन्होंने सचमुच में अपने वृहद मौन को भंग किया है, उन्होंने अपने को प्रकट किया है, लेकिन हम इस सच्चाई को कैसे वर्तमान में लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं जिससे यह मुक्ति बन सके। यह मूलभूत सवाल है और धर्म सभा का मुख्य कार्य यही है, ईश्वर की निगाहों में ध्यान केंद्रित करना, एक कलीसिया होना जो मानवता को करुणा की निगाहों से देखती है। उन्होंने कहा, एक कलीसिया जो ईश्वर को केंद्र बिंदु में रखती इस भांति आंतरिक रूप से विभाजित नहीं होती और बाह्य रूप में कभी कठोर नहीं होती है।
Così Gesù vuole la chiesa, così la vuole la sua sposa.
यीशु ख्रिस्त अपनी वधु कलीसिया को इसी रूप में देखने की चाह रखते हैं। दूसरे बिंदु की चर्चा करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि वही जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं ईश्वर के कार्यों को समझने में असफल होते हैं। यीशु पिता पर इस बात की खुशी को प्रकट करते हैं क्योंकि वे अपने को निरे बच्चों के लिए, साधारण लोगों, दीनहीनों के लिए प्रकट करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अपना पूरा जीवन सबसे कमजोर, दुखित और परित्यक्त लोगों के स्वागत हेतु समर्पित करते हैं। वे उनके लिए अपने इन शब्दों को घोषित करते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पापा ने कहा,
Questo sguardo accogliente di Gesù invita anche noi ad essere una chiesa ospitale.
स्वागत करने वाले यीशु की निगाहें हमें भी एक स्वागतार्थ कलीसिया बनने का निमंत्रण देता है। हमारे समय की कठिन परिस्थितियों में जहां हम एक नई संस्कृति और प्रेरित चुनौतियों को उभरता हुआ पाते हैं, हमसे उत्साह और विनम्र आंतरिक मनोभाव की मांग करती है जिससे हम हर किसी से भयमुक्त मिल सकें। सिनोडल वार्ता में जहां हम ईश प्रजा के रूप में पवित्र आत्मा के संग यात्रा, यह सुंदर यात्रा करते हैं, हम यीशु के संग एकता और मित्रता में बढ़ सकें जिससे हम आज की चुनौतियों को उनकी निगाहों से देख सकें। एक कलीसिया जो अपने एक हल्के जुए के साथ, जो दूसरों पर भार नहीं डालती है और जो हर एक जन के लिए यह दोहराती है, तुम जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, तुम जो अपने में खो गए हो या दूर चले जाने का अनुभव करते हो, मेरे पास आओ, तुम जो अपनी आशा के दरवाजों को बंद कर दिए हो, कलीसिया यहाँ तुम्हारे लिए है, कलीसिया का द्वार सबों के लिए खुला है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया की पवित्र प्रज्ञा, उनकी आशीष हमें जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों में भयावह प्रलोभनों में गिरने से बचाती हैं।
Camminiamo insieme, umili, ardenti e gioiosi.
हम एक साथ मिलकर नम्रता, जोश और खुशी में चलें। हम असिसी के संत फ्रांसिस के पद चिन्हों का अनुसरण करें। उन्होंने कहा, धर्म सभा हमारे लिए इस बात की याद दिलाती है, हमारी माता कलीसिया को सदैव शुद्धिकरण, मरामत की आवश्यकता है क्योंकि हम सभी पापी हैं जिन्हें पापों से क्षमा मिली है। हमें सदैव अपने स्रोत यीशु की ओर लौटने की जरूरत है जहां हम अपने को पवित्र आत्मा के मार्ग में स्थापित करते, जो हमें सुसमाचार को सबों के बीच ले जाने में मदद करते हैं। अपने प्रवचन के अंत में संत पापा ने कहा, शायद मैं कह सकता हूं कि धर्म सभा में सबसे उपयोगी क्षण प्रार्थना के होते हैं, यहां तक कि प्रार्थना का माहौल भी, जिसके मध्य प्रभु हमारे बीच कार्य करते हैं। आइए हम अपने आप को उनके लिए खोलें और उनका आह्वान करें। हमारे नायक पवित्र आत्मा हैं, हम उन्हें धर्म सभा का नायक बनने दें।
E con lui camminiamo nella fiducia e con gioia.
आइए हम विश्वास और आनंद में उनके साथ चलें।
सब है क्रिस्त के शरीर, कलीसिया के वो है शीश,
प्रतिष्ठान एक जीवन, जीना हमें है प्रभु का जीवन, प्रेम भरोसा विश्वास का जीवन, कलीसिया से प्रेम करो, पवित्र आत्मा का हो वरदान, कलीसिया से प्रेम।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 4 अक्टूबर असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में समारोही मिस्सा के साथ धर्म सभा का उद्घाटन किया। मिस्सा समारोह में 30 सितंबर की धर्म विधि में बनाए गए 21 नए कार्डिनल और कार्डिनल मंडल के सभी सदस्य एवं धर्म सभा के सभी 464 प्रतिभागी उपस्थित थे, जिनमें से 54 महिलाएं हैं जिन्हें पहली बार वोट देने का अधिकार है। पूर्वी कलीसियाओं के 20 प्रतिनिधि और संत पापा द्वारा नियुक्त 2 चीनी धर्माध्यक्ष भी उपस्थित थे। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में करीब 25,000 विश्वासियों ने पवित्र मिसा में भाग लिया। धर्म सभा के सभी सदस्यों ने साक्रोफानों में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक फादर तिमोथी रैडक्लिफ और मदर इग्नासिया एंजेलिनी की अगुवाई में आध्यात्मिक साधना के दौरान एकांतवास का अनुभव किया। 4 अक्टूबर को अपराह्न 4:15 बजे वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में संत पापा की उपस्थिति में पहली आम सभा आयोजित की जाएगी। संत पापा फ्रांसिस के अभिवादन के बाद महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद कार्डिनल जीन क्लाउड होलेरिक सभी प्रतिभागियों के सामने इंस्ट्रूमेंटम लैबोरिस दस्तावेज को प्रस्तुत करेंगे, जो धर्म सभा के प्रतिभागियों के काम का मूल दस्तावेज है और यह धर्म प्रांतीय और महाद्वीपीय चरणों के योगदान का परिणाम है। यह दुनिया में कलीसिया के अनुभवों का रिपोर्ट करता है जो युद्धों, असमानताओं, गरीबी, दुर्व्यवहार के घावों से पीड़ित है, या जो महिलाओं और सामान्य लोगों की भूमिका को पहचानने और विभिन्न क्षेत्रों में कलीसिया की भाषा को नवीनीकृत करने का आह्वान करता है। धर्म सभा के प्रतिभागी 5 भाषाओं अंग्रेजी, इतालवी, स्पानी, पुर्तगाली और फ्रेंच में विभाजित 21 सामान्य दलों में, 35 छोटे दलों में 5 से 29 अक्टूबर तक कार्य करेंगे। विभिन्न छोटे समूहों में एकता, मिशनरी प्रकृति, कलीसिया में अधिकार पर चिंतन, तरीकों के विस्तार और सारांश रिपोर्ट द्वारा चिन्हित किया जाएगा, जो दैनिक रूप से अंतिम दस्तावेज बनेगा। प्रतिदिन संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पेत्रुस के सिंहासन की वेदी पर मिसा समारोह मनाया जाएगा। इसके बाद सिनोडालिटी पर धर्म सभा के विशिष्ट क्षण होंगे, जैसे कि 19 अक्टूबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए प्रार्थना, जिसमें संत पापा के भी भाग लेने की उम्मीद है, और 25 अक्टूबर को वाटिकन गार्डन में रोजरी प्रार्थना का पाठ होगा। अंत में 29 अक्टूबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में फिर से संत पापा फ्रांसिस द्वारा पवित्र मिस्सा समारोह के अनुष्ठान के साथ धर्म सभा का समापन होगा और संत पापा फ्रांसिस का प्रेरितिक उद्बोधन लौदाते देयुम, ईश्वर की महिमा प्रकाशित हुआ है, जो 2015 के विश्व पत्र को निर्दिष्ट और पूरा करता है। परमेश्वर की महिमा इस प्रेरितिक उद्बोधन का शीर्षक है, क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर का स्थान लेने का दावा करते हैं तो वे स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। इस प्रकार संत पापा फ्रांसिस ने 4 अक्टूबर असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व दिवस पर प्रकाशित अपने नए प्रेरितिक उद्बोधन को समाप्त किया। यह उनके 2025 के विश्व पत्र लौदातो सी की निरंतरता में एक पाठ है, जिसका दायरा व्यापक है। 6 अध्यायों और 73 परिच्छेदों में संत पापा फ्रांसिस ने अभिन्न पारिस्थितिकी पर उस पिछले पाठ को स्पष्ट करने और पूरा करने का प्रयास किया है, साथ ही जलवायु आपातकाल के सामने एक चेतावनी और सहजिम्मेदारी का आह्वान भी किया है। विशेष रूप से उद्बोधन COP28 की प्रतीक्षा कर रहा है, जो नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत के बीच दुबई में आयोजित किया जाएगा। संत पापा लिखते हैं, समय बीतने के साथ मुझे एहसास हुआ कि हम पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि विश्व जहां हम निवास करते हैं अपने में गिर रही है, शायद टूटने की स्थिति में पहुंच रही है। इस संभावना के अलावा यह निर्विवाद है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कई व्यक्तियों के जीवन और परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह समाज और वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे कमजोर लोगों को भुगतना पड़ता है। हम स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के स्रोत, संसाधनों तक पहुंच, आवास, मजबूरन पलायन आदि क्षेत्रों में इसका प्रभाव महसूस करेंगे। यह एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है और मानव जीवन की गरिमा से गहराई से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारी चिंता के इस सामाजिक अर्थ को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है, जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से परे है। यह एक दूसरे के लिए हमारी देखभाल और पृथ्वी के लिए हमारी देखभाल एक साथ गहराई से जुड़ी हुई है। अमाजोनिया के लिए धर्म सभा में एकत्रित हुए धर्माध्यक्षों ने एक ही बात कही, प्रकृति पर हमलों का लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कि यह अब एक गौण या वैचारिक प्रश्न नहीं है, बल्कि एक नाटक है जो हम सभी को नुकसान पहुंचाता है। अफ्रीकी धर्माध्यक्षों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संरचनात्मक पाप का एक दुखद और सटीक उदाहरण है। रांची के पूर्व महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो ने बुधवार को दोपहर 3:45 पर मांडर के कॉन्स्टेंट लीबन्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रांची के सहायक धर्माध्यक्ष थेओदोर मस्कारेन्हास ने 4 अक्टूबर को स्वर्गीय कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन की जानकारी दी। शोक समाचार जारी कर कहा, बड़े दुख के साथ महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो एसजे और रांची महाधर्म प्रांत आपको सूचित करते हैं कि ससम्मान सेवानिवृत्त कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो, जो काफी समय से बिस्तर पर थे, 4 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:45 पर कॉन्स्टेंट लीबन अस्पताल और रिसर्च सेंटर मांडर में उनका निधन हो गया। वे 84 साल के थे। दफन क्रिया की तिथि बाद में बताई जाएगी। कार्डिनल पी टोप्पो का जन्म 15 अक्टूबर 1939 में गुमला के चैनपुर के सुदूरवर्ती जड़गांव में हुआ था। उनके पिता श्री एम्ब्रोस टोप्पो और मां सोफिया खलखो थीं। वे 10 भाई बहन थे। कार्डिनल पी टोप्पो भाई बहनों में 8वें नंबर पर थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।